हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वहीं अब जल्दी से अनामिका की नज़र गाजर के हलवे पर गई। वो सोच रही थी, अगर दादाजी ने देख लिया तो मेरी क्लास ले लेंगे, उन्हें पता चल जाएगा कि मैंने बाहर का फास्ट फूड खाया है। क्या करूं क्या करूं? देर न करते हुए झलक ने गहरी नज़रों से उसे हलवे को देखा, मानो कि किसी दुश्मन को देख रही हो। अनामिका जल्दी से बोली, झलक एक काम करो ना, तुमने तो कुछ भी नहीं खाया है, सुबह बस घर पर नाश्ता किया था, अब तो कुछ खा लो प्लीज। ये बोलकर उसने हलवा उसके आगे कर दिया। तब झलक ने बड़ी ही सरल तरीके से कहा, ठीक है। और फिर झलक ने गाजर के हलवे का डिब्बा अनामिका के आगे कर दिया था। अनामिका के पास कोई और रास्ता नहीं था, उसका पेट पहले से ही काफी फूला हुआ था, लेकिन अब वो समझ चुकी थी कि झलक तो इसे खाने से रही, इसीलिए मजबूरी में उसने फटाफट से चम्मच लिया और हलवा खाने लगी। उसका पेट बहुत ज्यादा खाने की वजह से फूला हुआ था, और जैसे ही उसने हलवा खाने शुरू किया, लेकिन उसे हलवा खाने में परेशानी होने लगी, दादाजी की डांट अज्यूम करने लगी। फिलहाल जैसे जैसे उसने हलवा खाया और एक बड़ी सी डकार मारी, तब जाकर उसे थोड़ी राहत मिली। फिलहाल दूसरी ओर अगली सुबह सिद्धार्थ अपने अपार्टमेंट में नशे धुत फ्लोर पर पड़ा हुआ था, और उसे धीरे धीरे होश आया। फिर वो फटाफट खड़ी हुआ, उसका चेहरा तनाव और चौंकाने वाला था। वो सोच रहा था कि कल रात को उसकी कैसी हालत थी और उस झलक की उसे किस तरह याद आ रही थी। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, एक ऐसी लड़की जिसका कोई वजूद नहीं है, मैं उसे कैसे याद कर सकता हूँ, कैसे? फिलहाल सिद्धार्थ ने खुद के इमोशंस पर नियंत्रण बनाए रखा, और फिलहाल उसने शावर की तैयारी की और फटाफट ऑफिस के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वो ऑफिस पहुंचा, उसके सामने आकांक्षा मौजूद थी। आकांक्षा को देखकर सिद्धार्थ रुका, लेकिन फिर अचानक आकांक्षा ने उसे गले लगा लिया। सिद्धार्थ को भी बुरा नहीं लगा, वो आकांक्षा के साथ झलक का फेस होने की वजह से समझौता करने को तैयार था। फिलहाल आकांक्षा जल्दी से बोली, सिद्धार्थ मैंने सोचा कि क्यों ना आज आपके साथ सुबह का ब्रेकफास्ट किया जाए, इसीलिए मैं सीधा यहाँ आ गई हूँ, आई होप आपको बुरा नहीं लगा होगा। तभी रौनित वहाँ आया और सिद्धार्थ को गुड मॉर्निंग विश करने के बाद बोला, बॉस आज आपकी कुछ इम्पॉर्टेंट मीटिंग है। सिद्धार्थ ने कहा, नहीं अभी कोई मीटिंग नहीं, हम उसे बाद में कर लेंगे। ये सुनकर रौनित सकते में आ गया, वो जानता था कि उसके बॉस ने अपने काम से ज्यादा किसी को इतनी अहमियत नहीं दी थी, लेकिन वो आज आकांक्षा को दे रहा था। फिलहाल सिद्धार्थ और आकांक्षा बड़े ही अच्छे माहौल में सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहे थे। मन ही मन आकांक्षा सोच रही थी, मेरी प्यारी बहन झलक, तुमने मेरी जिंदगी में कितनी खुशियां भर दी हैं, काश तुम जिंदा होती, मैं तुम्हें अपनी खुशी की तस्वीरें भेज देती, तुम्हारी जेलसी की वजह से मेरी खुशी 10 गुना बढ़ जाती। सिद्धार्थ बार बार आकांक्षा के चेहरे को देख रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि अभी झलक की जगह आकांक्षा बैठी है और वो बेदर्दी से खाना खा रही होगी पेट भरकर, लेकिन अब ऐसा नहीं था। आकांक्षा पूरे सभ्यता तरीके से बिना किसी ढीलेपन के खाना खा रही थी। फिलहाल वहीं दूसरी ओर दादी ने रणविजय से कहा, सिद्धार्थ और आकांक्षा की शादी की डेट हमने पंडित जी से मिलकर फिक्स कर ली, बेटा ये शादी तुम्हें ही करवानी है, हमने डिसीजन लिया है कि शादी मेंशन में ही होगी, इतना बड़ा लॉन है तो कहीं और करने की क्या जरूरत, वैसे भी सिद्धार्थ की शादी में पहले ही काफी कॉन्ट्रोवर्सी हो चुकी है, हम नहीं चाहते कि कोई हमारी शादी के फंक्शन को स्पॉइल करे, इसीलिए शादी अपने तरीके से ही करवाई जाएगी। रणविजय ने दादी को देखकर कुछ सोचा, लेकिन फिलहाल रणविजय ने गहरी सांस लेकर कहा, दादी क्या मैं तुमसे एक बात बोलूं, अगर आपको बुरा ना लगे? दादी ने सिर हिलाया। रणविजय ने कहा, आपको झलक के नाजायज रिश्ते से इतना एतराज क्यों है? सही मायने में देखा जाए तो मैं भी आपके बेटे की एक नाजायज रिश्ते की निशानी हूँ, भले ही आपके बेटे ने मेरी माँ से शादी की थी, लेकिन समाज की नजरों में नहीं, और शादी का कोई मतलब नहीं माना जाता, तो फिर झलक के साथ आपने इतना अजीब बर्ताव क्यों किया? हालांकि रणविजय ने खुद झलक के साथ कुछ अच्छा बर्ताव नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ दादी की वजह से उसने झलक को किसी लायक नहीं समझा था। अब जैसे ही अचानक रणविजय ने ये सवाल किए, दादी के हाथ कांपने लगे, लेकिन वो थोड़ा सा खुद को शांत करके गहरी सांस लेकर बोली, बेटा हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, और शायद तुम हमारे दोगलापन के बारे में सीधे तरीके से नहीं कह पा रहे कि हमने दोगलापन किया। तुम ठीक कह रहे हो, तुम और सिद्धार्थ हमारे लिए बिल्कुल भी अलग नहीं हो, पर तुम्हें शायद एक बात के बारे में नहीं पता, अपने बेटे की दूसरी शादी के बारे में। हमें अच्छी तरह से पता था, और हमने ही तुम्हारे पिता से कहा था कि शादी की खबर किसी को भी पता नहीं लगनी चाहिए, अगर शादी की खबर किसी को पता चलती तो हमारे परिवार की इज्जत 2 कौड़ी के रह जाती। अब जैसे ही दादी ने ये बम फोड़ा, रणविजय की आंखें, उसका चेहरा हैरानी से भर चुका था और बड़बड़ाया, पापा ने दूसरी शादी कर रखी है, आपको पता था? तभी उर्वशी अपने तेज चेहरे के साथ बोली, हाँ, तुम्हें क्या लगता है हमने यूं ही इतना बड़ा परिवार हमने खड़ा किया है? हाँ, हम पूरे शहर की खबर रखते हैं, तो क्या हमें अपने घर की खबर नहीं रहती? जब तुम अपनी माँ के पेट में थे उस वक्त हमें इसके बारे में पता चल चुका था, तुम्हारे जन्म का भी हमें पता चल गया था, हमने पूरी कोशिश की थी कि सिद्धार्थ की माँ के सामने सारी चीजें ना आए, लेकिन जब तुम 9 साल की उम्र के थे तब तुम्हारे पिता की एक बेवकूफी की वजह से सब कुछ उसकी आंखों के सामने आ गया और हमारा पूरा परिवार बिखर गया। ये सुनकर रणविजय की आंखें पूरी तरह से मायूसी से भर गईं। लेकिन तभी दादी रणविजय की आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है, झलक का सच सामने आने के बाद अगर हम पूरे समाज के सामने झलक की साइड लेते तो तुम्हें क्या लगता है कि हमारे परिवार पर उंगलियां नहीं उठती? पूरे तरीके से हमारे परिवार पर उंगलियां उठती। हमने तुम्हें हमेशा से ही सिद्धार्थ के चाचा के बेटे के रूप में सब लोगों के सामने पेश किया, सिद्धार्थ के चाचा के बेटे के रूप में इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन किसी को भी असली सच नहीं पता है कि असल में तुम हमारे लिए क्या हो। और बेटा, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ से शादी की थी, तुम नाजायज रिश्ते की निशानी नहीं थे। हाँ, ये बात और है कि समाज के सामने वो रिश्ता नहीं आया था, लेकिन झलक एक बलात्कार की निशानी थी। नैना ओबेरॉय के साथ बलात्कार हुआ था और वो उसी की निशानी थी, जिसे समाज में कभी भी स्वीकार नहीं किया जाता। और जब उसकी अपनी सगी माँ ने उसे स्वीकार नहीं किया, तुम्हें क्या लगता है समाज उसे स्वीकार करता? कभी भी नहीं। हम इसमें हमारा दोगलापन, हमारी सेल्फिशनेस मान ले, लेकिन हमने जो कुछ किया सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की इज्जत और मान मर्यादा बचाने के लिए किया। परिवार की इज्जत से ज्यादा जरूरी कुछ भी है, हम खुद भी नहीं है। अब ये सुनकर रणविजय अंदर ही अंदर हैरानी से भर गया, लेकिन दादी के सामने उसने अपने सबसे ज्यादा एक्सप्रेशन जाहिर नहीं किए। मन ही मन बोला, इसका मतलब साफ है, शादी के बाद अगर मैं आकांक्षा के साथ एक रात बिताता हूँ और सिद्धार्थ के सामने, तो चाहकर भी वो आकांक्षा को छोड़ नहीं पाएगा। ये सोचते हुए रणविजय का चेहरा एक अलग चमक से भर आया, क्योंकि उसके बचपन से लेकर बड़े होने तक उसे कितनी ही सारी बातें सिद्धार्थ में सुनाई थीं और दोनों में कितने ही झगड़े भी हुए थे। फिलहाल अब दोनों भले ही झगड़ा नहीं करते और भले ही दादी की वजह से चुप हैं, लेकिन दोनों में 36 का आंकड़ा था, ये बात किसी से छुपी नहीं रही।
फिलहाल वहीं दूसरी ओर नैना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी उसे MP चुन लिया गया था और अब तो वो और शानदार तरीके से अपनी बेटी की शादी करने के लिए तैयार थी। इतने ही नहीं, अपनी बेटी की शादी में पूरे शहर को दावत देने का उसने फैसला किया था। उसने तय कर लिया था कि इस बार वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी, जितना हो सकेगा सबके सामने अपनी बेटी की शादी पूरी भव्यता से मनाएगी। इस राज्य में किसी MP के स्तर तक पहचान हासिल करने की तैयारी थी, क्योंकि अब लोग उसे एक नई नज़रों से देखने लगे थे।